श्याले विदूषक संस्कृत नाटकों में जो राज का तत्व रहता था वह प्रायः इसी पात्र में केंद्रस्थ कर दिया जाता था। अंग्रेजी नाटकों का क्लाउन इसी की नकल बताई जाती है। विदूषक ब्राह्मण होता था और यह अधिकतर पेटू हुआ करता था, जैसे प्रसाद जी के स्कंदगुप्त नाटक में मुद्गल नाम का विदूषक आता है। मालूम पड़ता है उस समय में ब्राह्मण आजकल की भांति भोजन भट्ट होते थे। वह राजा का विश्वास पात्र और सलाहकार भी होता था। शायद इसलिए वह ब्राह्मण रहता था क्योंकि उस समय मंत्रित्व अर्थात सलाह देना ब्राह्मणों का स्वाभाविक कार्य था। वह उसके प्रेम कार्य में मंत्री होता था। उसकी अंतःपुर में भी गति होती थी। राजा उसको वैश्य या मित्र कहकर संबोधित करते थे। नाटकों में और भी बहुत तरह के पात्र रहते थे जिनका वर्णन विस्तार भय से नहीं दिया जाता था। हमारे यहाँ नायिकाओं के विभाजन का विस्तार क्रम दोष की हद तक पहुँच गया था। यह विभाजन यद्यपि अधिकतर श्रृंगार से ही संबंध रखता था, तथापि इसके द्वारा स्त्रियों के मनोवृत्ति का अच्छा अध्ययन मिलता है। नायक की भांति नायिकाओं के भी सामान्य गुण शास्त्रों में बतलाए गए हैं, जिनके देखने से प्रतीत होता है कि साहित्य में नायिकाओं का बड़ा उच्च आदर्श था। उनमें यौवन के साथ कुल का गर्व तथा गुणशील तथा प्रेम की आंतरिक श्रेष्ठताएं भी होती थी। कुल का गर्व प्रायः स्त्रियों को दुष्चरित्र होने से बचाए रखता है, इसलिए उनका भी होना आवश्यक है। नायिका के 8 गुड़िया अंग माने गए हैं। इन गुणों से युक्त अष्टांगवती नायिका कहलाती थी। वे गुण इस प्रकार हैं: जा कामनी में देखिए पूरन 8 अंग, ताही बखाने नायिका त्रिभुवन मोहन रंग। पहले जोवन रूप गुण सील प्रेम पहचानी, कुल वैभव भूषण बहुरी 8 अंग बखाने देव। इस प्रकार संस्कृत नाटकों में पात्र प्राय एक बधे हुए कैंडे के होते थे, तब भी उनमें व्यक्तित्व रहता था। उत्तरान चरित के राम चंद, कौशिक के हरिश्चंद्र आदि नायक आदर्श होते हुए भी अपना व्यक्तित्व रखते हैं। इतना अवश्य मानना पड़ेगा कि नायकों के आदर्श होने के कारण उनमें विकास के लिए कम स्थान रहता है, फिर भी उनके विचारों में थोड़ा बहुत परिवर्तन दिखाई देता है जो उनको नितांत अचल होने से बचाए रखता है। भाव का संघर्ष पहले नाटकों में भी रहता था। रस विधान में इसको संघर्ष पृष्ठ 47 नहीं कहा गया है, किंतु भाव संधि की संज्ञा दी गई है। पात्र अपनी स्वाभाविक मनुष्य सुलभ कमजोरी की ओर झुकते हैं, किंतु एक साथ संभल जाते हैं। उत्तर रामचरित में शंभु के वध के समय राम में कुछ दया का भाव आया मालूम पड़ता है, किंतु वे तुरंत ही उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। शब्द हरिश्चंद्र में भी मानवीय कमजोरी की एक क्षीण रेखा दिखाई दे पड़ती है, किंतु वह व्यापक कर्तव्य के प्रकाश में विलीन सी हो जाती है। चरित्रण के प्रकार नाटक में चरित्रण विश्लेषणात्मक या प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, यह तो उपन्यासकार का ही विशेषाधिकार है। वह स्वयं अपने पात्रों का पाठकों से परिचय कराए तथा उनकी प्रकृति और उनके हृदय के गूढ़ रहस्यों पर प्रकाश डाले। नाटक में तो चरित्र चित्रण के परोक्ष या अभिनयात्मक ढंग से काम लिया जाता है, या तो नाटक के पात्र एक दूसरे के चरित्र पर प्रकाश डालते हैं या पात्र स्वयं अपने चरित्र का उद्घाटन करते हैं। एक पात्र दूसरे के चरित्र के मूल्यांकन में पक्षपात या ईर्ष्यावश गलती कर सकता है, किंतु यह प्रायः ईमानदारी का होता है। प्रायः जो अपने बारे में स्वगत रूप से अथवा अपने घनिष्ठ मित्र से अपने हृदय का भार हल्का करने के लिए कहता है वह एक प्रकार की आत्म स्वीकृति ही होती है, उसकी सत्यता में संदेह करने की गुंजाइश नहीं। यदि भावावेश में कुछ अत्युक्तियां हो जाए जो दूसरी बात है, स्वगत कथन अस्वाभाविक अवश्य होता है, किंतु चरित्र के उद्घाटन में सहायक होने के कारण निरर्थक भी नहीं कहा जा सकता। प्रसाद के स्कंदगुप्त से तीनों प्रकार के अभिनयात्मक चरित्र चित्रण के उदाहरण यहाँ दिए जा सकते हैं। क, स्वयं पात्र द्वारा अपने चरित्र का उद्घाटन। स्कंदगुप्त स्वगत कथन में अपने विषय में कहता है, स्कंदगुप्त, इस साम्राज्य का बोझ किसके लिए? हृदय में अशांति, राज्य में अशांति, परिवार में अशांति, केवल मेरे अस्तित्व से। केवल गुप्त सम्राट के वंशधर होने की दयनीय दशा ने मुझे इस रहस्यपूर्ण क्रियाकलाप में संलग्न रखा है। तृतीय अंक, स्कंदगुप्त चक्रपालित से बात करता हुआ इन्हीं भावनाओं को प्रकाश में लाता है। देखिए, स्कंदगुप्त, चक्र, ऐसा जीवन तो विडम्बना है जिसके लिए दिन रात लड़ना पड़े। आकाश में जब शीतल शुभ्र शरद शशि का विलास हो, तब भी दांत पर दांत रखे, मुट्ठियों को बांधे हुए लाल आंखों से एक दूसरे को घूरा करें। चक्र, मेरी समझ में मानव जीवन का यही उद्देश्य नहीं है। कोई और भी निगुड़ रहस्य है, चाहे उसे मैं स्वयं न जान सका हूँ। द्वितीय अंक, पृष्ठ 48, ख, दूसरे पात्र द्वारा चरित्र पर प्रकाश। बंधु वर्मा भी स्कंदगुप्त के संबंध में कुछ ऐसा ही सोचते हैं। देखिए, बंधु वर्मा, उदार वीर हृदय, देवोपम सौंदर्य, इस आर्यावर्त का एकमात्र आशा स्थल, इस युवराज का विशाल मस्तक कैसी वक्र लिपियों से अंकित है। अतः करण अंतकरण में तीव्र अभिमान के साथ विराग है, आंखों में एक जीवन पूर्ण ज्योति है। द्वितीय अंक, ग, कार्यकलाप द्वारा चरित्रण। स्कंदगुप्त का कार्यकलाप भी इस बात की पुष्टि करता है कि वह अपने लिए लड़ता है। वह कहता है, स्कंदगुप्त, विजया, मैं कुछ नहीं हूँ, उसका अस्त्र हूँ, परमात्मा का अमूर्त अस्त्र हूँ। मुझे उसके संकेत पर केवल अत्याचारियों के प्रति प्रेरित होना है। किसी से मेरी शत्रुता नहीं, क्योंकि मेरी निज की कोई इच्छा नहीं। पंचम अंक, इन्हीं आदर्शों की पूर्ति स्कंदगुप्त अपने त्याग द्वारा करता है। देखिए, स्कंदगुप्त, भट्टार्क, मैंने तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी की। लो, आज इस रणभूमि में मैं पुरुषगुप्त को युवराज बनाता हूँ। देखना, मेरे बाद जन्मभूमि की दुर्दशा न हो। रक्त का टीका पुरुषगुप्त को लगाता है। पंचम अंक, यही स्कंदगुप्त के चरित्र की अभिन्नति है। यहाँ कथनी और करनी एक हो जाती है। मनुष्य का कार्यकलाप उसके चरित्र का सबसे बड़ा सच्चा परिचायक होता है। इसलिए कथोपकथन और कार्य व्यापार की अभिन्नति चरित्र की दृढ़ता के साथ नाटककार के कौशल का परिचय देती है। सफल कथोपकथन वही होता है जो कि या तो कथा क्रम के अग्रसर करने में सहायक हो या चरित्र पर प्रकाश डाले। नाटकीय लाघव की यह मांग है कि कथोपकथन यथासंभव छोटा ही न हो, वरन ऐसा हो कि वह चरित्र पर अधिक प्रकाश डाले। वे ये बातें और कार्य सामने आए जिनमें चरित्र की कुंजी सन्निहित हो। स्वल्प साधनों द्वारा अधिक से अधिक कार्य निकालना यही कलाकार का कौशल है। थोड़े से समय में हम नाटक और उपन्यास के पात्रों के संबंध में वास्तविक जीवन के पात्रों की अपेक्षा गहरा परिचय प्राप्त कर लेते हैं। उपन्यास और नाटक के पात्र भी अपना थोड़ा बहुत समय दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा निरुद्देश्य वार्तालाप में बिताते होंगे, किंतु हमारे सामने उनका सजीव और सक्रिय रूप ही आता है। यदि उनकी अकर्मण्यता उनके चरित्र का अंग ही हो तो दूसरी बात है, नहीं तो नाटक और उपन्यास के पात्रों का कथोपकथन और कार्यकलाप चुना हुआ और सोद्देश्य होता है। पृष्ठ 49, रस और उद्देश्य। भारतीय परंपरा अनुसार नाटकों में रस को मुख्यता दी गई है और पाश्चात्य परंपरा में उद्देश्य को। हमारे देश में रस का विवेचन पहले पहल नाटक के ही संबंध में किया गया था। उस रस उन तीन बातों में ही एक में से एक है जो रूपकों के विभाजन आधार बनती है। रस का स्वतंत्र विवेचन लेखक के सिद्धांत और अध्ययन प्रथम भाग अध्याय 8 में किया गया है। प्रत्येक नाटक में कोई न कोई रस अंगी रूप से रहता है। शकुंतला नाटक में श्रृंगार और दूसरे रस भी अंग रूप से आ सकते हैं। शकुंतला में और भी रस जैसे वीर वात्सल्य रौद्र आए हैं, किंतु वे श्रृंगार के आश्रित होकर आए हैं। रसों का समावेश रस मैत्री और रस विरोध के नियमों के आधार पर किया जाता है। पाश्चात्य देशों के नाटकों में कुछ न कुछ उद्देश्य व्यक्त या अव्यक्त रूप से रहता है। वह किसी प्रकार की जीवन मीमांसा या विचार सामग्री के रूप में आता है। इस उद्देश्य का संबंध आंतरिक और बाह्य संघर्ष से होता है। यह संघर्ष पाठकों के उद्देश्य के ग्रहण करने के लिए तैयार कर देता है। नाटक की विचार सामग्री पात्रों के पारस्परिक कथोपकथन में ही उपस्थित होती है। नाटककार जो कुछ स्वयं कहना चाहता है वह किसी पात्र द्वारा ही कहलवाता है अथवा वह कथानक में व्यंजित रहता है। आजकल के बुद्धिवादी नाटकों में विशेषतया समस्यात्मक नाटकों में इस उद्देश्य का प्राधान्य रहता है। मानव सहानुभूति का विस्तार तो प्रायः सभी देशों या देशी या विदेशी नाटकों का व्यापक उद्देश्य रहता है। दुखांत नाटक मीमांसा। दुखांत नाटक के देखने में आनंद क्यों? पाश्चात्य देशों में नाटकों का विभाजन दुखांत और सुखांत के रूप में किया जाता था। दुखांत नाटक प्रारंभ में गंभीर नाटक होते थे। दुख में गंभीर अधिक रहता है, इसलिए गंभीर नाटकों में दुखांत का रूप धारण किया। आजकल दुखांत सुखांत का ऐसा कटा छटा विभाजन नहीं रहा जैसे पहले था। भारतवर्ष में तो सब नाटक सुखांत ही होते थे, किंतु उनमें थोड़ा बहुत दुख का तत्व भी रहता था। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि दुखांत नाटकों के देखने से क्यों सुख होता है? यदि सुख नहीं मिलता तो हम पैसा देकर क्यों आंसू बहाने जाते? इस संबंध में अरस्तु ने तो अपना रेचन का सिद्धांत चलाया था। उनका कथन है कि हमारे मन में जो करुणा और भय की मात्रा रहती है, यदि वह इकट्ठी होती रहे तो हानिकारक हो जाएगी। जिस प्रकार वैद्य हमारे मलों को निकाल कर हमारे शरीर को शुद्ध कर देता है, उसी प्रकार दुखांत नाटक में कृत्रिम रूप से हमारी करुणा और भीति अर्थात भय को निकास मिल जाता है। पृष्ठ 50। यह सिद्धांत सर्वमान्य नहीं है। अंग्रेजी के आलोचकों एफएल लुकास का कथन है कि हम दुखांत नाटकों को इसलिए देखने के लिए नहीं आ जाते कि हम अपने को मनोवेगों से पृथक कर ले, वरन इसलिए कि अधिक मात्रा में उसको पावे, उनका रसा स्वाद करे, न कि उनको निकाले। उनका कहना है कि ट्रेजरी में उस प्राणी को भी जिसका नीरस आगामी कल आज के समान ही होता है, दूसरों के प्रतिनिधित्व में कुछ अधिक मिल सकता है। 9। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि कथानक के दुखात्मक होते हुए भी शैली की सरसता उसमें आनंद की दृष्टि कर देती है। इस संबंध में यह भी कहा जा सकता है कि दुखांत नाटक अथवा दुखात्मक नाटक नाटक तो होते ही हैं, तथा जिस प्रकार और कोई नाटक या काव्य हमको प्रसन्नता देते हैं, उसी प्रकार और उन्हीं कारणों से दुखांत नाटक भी प्रसन्नता देते हैं। काव्य या नाटक से हमको क्यों प्रसन्नता होती है, इसके भी कई उत्तर हो सकते हैं। उनमें से एक यह भी है कि काव्य के द्वारा हमारी आत्मा का विस्तार होता है, हम शेष सृष्टि के साथ रागात्मक संबंध में आते हैं। नाटक चाहे दुखांत हो चाहे सुखांत, उसके पात्र हमारे जैसे हाड़ मांस चाम के पतले पुतले होते हैं और वे हमारी तरह ही इच्छा द्वेष और प्रयत्न कर सुख या दुख के भागी बनते हैं। मनुष्य स्वभाव से सहानुभूतिशील है, वह अपने कुल और गोत्र की वृद्धि चाहता है। मनुष्य सामाजिक जीव है। वर्तमान सभ्यता का जटिल जीवन अथवा संसार में जीवन के सीमित उपादान उसको प्रतिद्वंद्विताशील और असामाजिक बना देते हैं। यद्यपि ऐसे भी लोग हैं जो बिन काज दाहिने बाएं होते हैं, तथापि वे बिरले हैं और यदि उनका इतिहास देखा जाए तो ज्ञात होगा कि वे भी जीवन के किसी अभाव या निराशा के कारण ऐसे बने होंगे। नाटक देखने या उपन्यास पढ़ने से हमारे सामाजिक भाव की तृप्ति होती है। नाटक या उपन्यासों के पात्रों से हमारा संबंध किसी प्रकार से दूषित भाव का नहीं होता। वे हमारे प्रतिद्वंदी नहीं होते और न उनसे हमारा जमीन जायदाद का कोई झगड़ा होता है। उनके प्रति हमको ईर्ष्या और मात्सर्य भी नहीं होता और न उनकी विभूति देखकर हमको जुड़ी आती है, क्योंकि ज्यादातर हमको अपने पड़ोसी को मोटर में जाते देखकर ईर्ष्या होती है। दुनिया भर से नहीं, जिनका ईर्ष्या भाव अधिक व्यापक हो जाता है उनको नाटक या सिनेमा में भी आनंद न मिलेगा। इस प्रकार नाटक, सिनेमा, उपन्यास, प्रबंध, काव्य सभी हमारे सामाजिक भाव की तृप्ति करते हैं। काव्य के द्वारा लौकिक जीवन की कटुता, दुखाई और दाहकता, माधुर्य, स्निग्धता और शीतलता का रूप धारण कर लेती है और काव्य के आलम्बनों से हमारा निजी संबंध न रहकर मानवता का नाता हो जाता है। हमारे लौकिक संबंध कभी कभी मानवता से हटे रहते हैं। काव्य के संबंध मानवता के संबंध होने के कारण सत्व गुण प्रधान होते हैं। इसी सत्व गुण की अभिवृद्धि से तथा जिज्ञासा वृत्ति से उत्पन्न चित्त की एकाग्रता द्वारा आत्मा का स्वाभाविक आनंद प्रस्फुटित हो उठता है। यही पृष्ठ 51 ब्रह्मानंद सहोदर काव्यानंद है। हिंदू शास्त्रों का कुछ ऐसा ही मत है। दुखांत नाटकों का दुख क्या इस आनंद में बाधक होता है? इसके लिए हमको दुख का कारण जानना चाहिए। वास्तविक जीवन में दुख का कारण निजीपन ही तो है। इसी से ज्ञानी मुक्त होना चाहता है। काव्य द्वारा हम लौकिक जीवन के निजीपन को खो देते हैं। ऐसा करने में कुछ नुकसान अवश्य होता है, क्योंकि सुखानुभूति की तीव्रता कुछ कम हो जाती है। यदि दर्शक को स्वयं लॉटरी मिल जाए तो उसको नाटक के नायक को लॉटरी या संपत्ति मिलते देखने से कहीं अधिक प्रसन्नता होगी, लेकिन उसी के साथ अनुभूति की व्यापकता बढ़ जाती है। तीव्रता के स्थान में व्यापकता आती है। नाटक का आनंद सहानुभूति का आनंद है। यह वैसा ही आनंद है जैसा कि एक परोपकारी जीव को दुखित और पीड़ितों की सहायता में मिलता है। दुखांत नाटकों के देखने से करुण रूप, करुण रस की उत्पत्ति होती है। हम शोक नहीं चाहते, किंतु करुण रस में जो अनुभूति, जो सहानुभूति पर आश्रित होता है, मग्न होना चाहते हैं। भाव सुख दुख में होते हैं, रस आनंद में है। दुखांत या दुखात्मक नाटकों का दुख आनंद में बाधक नहीं वरन सहायक होता है। दुखांत नाटक अर्थात रजरी का मूल अर्थ गंभीरता प्रदान नाटक था। दुखांत नाटकों में जीवन का गांभीर्य अधिक होने के कारण उनमें सुखांत नाटकों की अपेक्षा सहानुभूति की मात्रा अधिक होती है। इस सहानुभूति से हमारी आत्मा का विस्तार होता है। आत्मा का विस्तार ही सुख है। सुखांत नाटकों में ईर्ष्या आदि के बुरे भाव भी जागृत हो सकते हैं, किंतु कभी कभी दुख की अतिशयता का भी हमारे ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमारे यहाँ दुखात्मक नाटक होते हैं, सुखांत नहीं। दुखांत नाटकों में मनुष्य की सहनशीलता को देखकर हम में गर्व की भावना जागृत होती है और कभी कभी हम अपने अपेक्षाकृत तुच्छ दुखों को भूल जाते हैं। सुख में जो विलास की उन्मत्तता आती है, उसका दुख में अभाव रहता है। दुख में तो सात्विकता का उदय होता है। इस दृष्टि से दुखांत नाटकों का महत्व अवश्य है। फिर भी उनके द्वारा हमारा ईश्वरीय न्याय की भावना में ठेस लगती है। भारतीय नाटककार इस भावना को ठेस नहीं पहुंचाते। भारत में दुखांत नाटकों का अभाव। इस संबंध में एक प्रश्न और रह जाता है, वह यह है कि जब दुखांत नाटकों में सहानुभूति बढ़ती है, तब संस्कृत नाटकों में दुखांत नाटकों का अभाव क्यों रखा? संस्कृत नाटकों में केवल उरुभंग नाटक ही दुखांत है, किंतु दुर्योधन के मारे जाने से किसी को दुख नहीं होता। हमारे यहाँ तो मृत्यु आदि के दृश्य वर्ज्य माने गए हैं, क्योंकि करुण या राज विप्लव आदि भय के दृश्यों को मंच पर दिखाने से एक प्रकार का लौकिक अनुभव सा हो जाता है। पृष्ठ 52। और वह उस आनंद में बाधक होता है जिसके लिए हम नाटक देखने जाते हैं। दूसरी बात यह है कि सहानुभूति को कृत्रिम रूप से जागृत करने से उसकी शक्ति और तीव्रता कम हो जाती है। लोगों को दुख में देखते देखते दूसरों को दुखी देखने की आदत सी पड़ जाती है और मन में वही मनोवृत्ति उत्पन्न होती है जो कि शेर के साथ लड़ाई लड़ते हुए ग्लेडिएटर को, अर्थात वह कैदी जिसको फांसी का हुक्म होता था, मरते देखने में होती थी। इसलिए श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से कहा था कि मैं तुम्हारा प्रत्युपकार नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरी यह इच्छा नहीं है कि तुम पर कभी दुख पड़े और मैं तुमको मुक्त करूं। हमारे यहाँ के लोग जीवन का आदर करते थे, वे मनुष्यों का मंच पर गाजर मूली की भांति काटा जाना पसंद नहीं करते थे। इस संबंध में सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब तक किसी बड़े आदमी को, बड़े को नहीं वरन श्रेष्ठ पुरुष को दुख न हो, तब तक करुणा और सहानुभूति नहीं उत्पन्न होती। हरिश्चंद्र ऐसे सत्यवादी और दशरथ ऐसी दृढ़ व्रति को ही दुख उठाते हुए देखकर हमारे हृदय में करुणा का संचार होता है, लेकिन ऐसे लोगों को दुख उठाते हुए देखकर हमारी ईश्वरीय न्याय संबंधी भावना को भी ठेस पहुंचाती है। राम को वनवास जाते हुए देखकर देव को ही दोष दिया जाता है। शेक्सपियर और गाल्सवर्दी यूनानी दुखांत नाटकों में दुख का कारण दुर्भाग्य दिखलाया जाता था। नायक प्रायः निर्दोष रहता था। शेक्सपियर के नाटकों में दुर्भाग्य किसी खलनायक या धूर्त का, जैसे ओथेलो नाटक में आइगो रूप धारण कर लेता था और वह, अर्थात नायक, अपनी मूर्खता के कारण उसके फंदे में फंस जाता था। ओथेलो का शीघ्र विश्वास कर लेने वाला शंकाशील स्वभाव उसकी निर्दोष एवं पति परायणा पत्नी और स्वयं उसकी मृत्यु का कारण बनता है। शेक्सपियर में ईश्वरीय न्याय केवल इतना ही रहता है कि खलनायक के कुचक्र से असली नायक का तो घात जाता है, किंतु वह, अर्थात खलनायक, अपने कुचक्र का लाभ नहीं उठाने पाता है। साधुता दुख उठाती है की बात तो रहती है, किंतु फिलोसफी खलई की बात चरितार्थ नहीं होने पाती। खलता फूलती फलती नहीं। नायक का थोड़ा दोष अवश्य रहता है, इसलिए भाग्य को पूर्णतया दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, किंतु थोड़ी सी भूल या बुराई का दुष्परिणाम मूल कारण की अपेक्षा कहीं अधिक होता है। आजकल गाल्सवर्दी आदि के नाटकों में समाज की दुर्व्यवस्था इसका कारण बनती है, किंतु फिर भी श्रेष्ठ पुरुषों को वर्तमान समाज में श्रेष्ठता का अर्थ आवश्यक रूप से कुलीनता नहीं है। दुखित देखकर ईश्वरीय न्याय की भावना को आघात पहुंचा है। यह हम मानते हैं कि दुखात्मक घटनाओं के देखने से हृदय में कोमलता आती है और विचारों में सात्विकता जागृत होती है। फिर भी एक बड़ी समस्या का हल पृष्ठ 53 करना पड़ता है। एक ओर दुखान नाटकों द्वारा भावों की परिशुद्धि और दूसरी ओर ईश्वरीय न्याय की रक्षा की मांग। इस उभय तोपाश, इधर कुआं उधर खाई वाली बात से बचने के लिए ही संस्कृत के प्राचीन नाटककारों ने दुखान नाटकों के स्थान में सुखान नाटकों की रचना की थी। उत्तरांचरित में करुणा की पर्याप्त मात्रा है, किंतु उसका अंत वियोगांत नहीं हुआ है। इसी प्रकार चंड कौशिक, अर्थात सत्य हरिश्चंद्र में भी करुणा की मात्रा पर्याप्त है, किंतु इसका अंत सुख में हुआ है। इसमें भावों की परिशुद्धि एवं सहानुभूति की जागृति के साथ ईश्वरीय न्याय की रक्षा पूरी तौर से हो गई है। विश्वामित्र का पश्चाताप सत्य की विजय का द्योतक है।